Hare Krishna. So Damodar desh se aaye hue Krishna bhakta vaishnav ke sang mein aaj yatra ka chhatha din hai. 14 aur 20 6 din ho gaye. 6 din se hum saath tirath yatra kar rahe hain. Aaj subah ye charcha kar rahe the सात ग्रस्तों के लिए सबसे एलाबोरेटली विस्तार से धर्म का पालन करने की शिक्षा भागवत के सातवें स्कंद में इन सेवेंथ कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम नारद युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न के ऊपर इस कॉन इज क्वेश्चन इज एंसरिंग द स्पेसिफिक ग्रस्त धर्म. और ऐसा अच्छा कहीं ग्रस्त धर्म का वर्णन किसी शास्त्र में नहीं मिलता है. सेवेंथ कैंटो इज अ वेरी स्पेशल चैप्टर. सो कंक्लूजन इज द थ्री थिंग्स इंपॉर्टेंट इज टेलिंग फॉर ग्रस्ता. तीन विशेष चीजें कह रहे हैं. वासुदेव अवतार कथा नंबर वन. भगवान के अवतार की कथा जन्म कर्म च मे दिव्यम. ये हमेशा ग्रस्त को सुननी चाहिए. They must always hear Krishna Katha. The other part of the hearing is they should read Prabhupada's books. That's also Krishna Katha, directly hearing Prabhupada. So one most important thing for Grastha is, kyun hai ye hearing important? Because we will develop attachment for Krishna. When we hear about Krishna, then we will develop attachment for Krishna. Upar baith ja, idhar baith ja, baith ja, idhar baith ja. Sit here. जब हम सुनेंगे भगवान के विषय में तब हमारे को भगवान से आकर्षण होगा, अटैचमेंट होगी. वी विल बी अट्रैक्टेड टू कृष्णा व्हेन वी हियर अबाउट हिज भक्त वत्सलता. कितना भगवान से भगवान प्रेम करते हैं कृष्णा. हाउ ही केयर फॉर हिज डिवोटी व्हेन वी हियर द डिफरेंट पास्ट टाइम ऑफ कृष्णा देन वी विल गेट अट्रैक्टेड टू कृष्णा. और दूसरा जो ग्रस्तों के लिए मुख्य सिद्धांत बताया है नारद जी ने, तीर्थ यात्रा करना. एंड देन द नेम ऑफ मेनी तीर्थ इंक्लूडिंग द्वारका, मथुरा, काशी, जगन्नाथपुरी, देयर इज अ लिस्ट नारद जी सेड. उनको समय समय के ऊपर तीर्थ यात्रा में जाना चाहिए. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड. तीर्थ यात्रा में जाने का क्या लाभ है? व्हाट इज द एडवांटेज तीर्थ यात्रा में जाने का? उदय विशेष क्या लाभ है? पवित्र होना. तीर्थ क्या काम करते हैं? पवित्र करते हैं. तीर्थ हमको पवित्र करते हैं. तीर्थ यात्रा में जाते हैं हम काय के लिए? पवित्र. पवित्र कैसे होते हैं? तपस्या करनी पड़ती है. हरे कृष्ण. और दूसरा तीर्थ यात्राओं का विशेष हरिहरि बोल. एक तो तीर्थ यात्रा का उद्देश्य है पवित्र होना. इट इज फॉर प्यूरिफिकेशन. क्योंकि उसमें थोड़ी तपस्या होती है. और जहाँ जिस स्थान के ऊपर हम जाते हैं, प्लेस व्हिच एवर द प्लेस वी विजिटेड, एवरीथिंग इन अवर माइंड इज अबाउट दैट प्लेस. अब यहाँ आए हैं तो नाथ द्वारा, नाथ जी, जो कुछ भी हम डिस्कस करेंगे नाथ जी आएगा बीच में. सो अवर कॉन्शियस इज फोकस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर लीला ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एट दैट प्लेस. ऐसे कहीं और घूमने जाएंगे दुनिया के पाश्चात्य देशों में तो उस देश की विशेषता दिमाग में घूमेगी, भगवान नहीं घूमेगा. इट्स वेरी नेचुरल. इट्स जस्ट स्पॉन्टेनियस. इसलिए नारद जी कहते हैं तीर्थ यात्रा समय समय पे के ऊपर करनी चाहिए ग्रस्तों को. क्योंकि हर एक आदमी को युक्त आहार विहारस्य, भगवत गीता में भगवान का युक्त विहार भी करना चाहिए. विहार करने मीन्स एक्सकर्शन फॉर रिलैक्सेशन. तो वो भी युक्त होना चाहिए. इसका मतलब युक्ति से होना चाहिए. ऐसी जगह जाओ जहाँ भगवान की यादगिरी होती रहे, घूमना भी हो जाए, लेकिन उसके साथ शरीर को तो रिलैक्सेशन मिले लेकिन आत्मा भी एंजॉय करे. रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए लिखा है, जब वो अपने घर से भागे और जगन्नाथपुरी चैतन्य महाप्रभु के शरण में जाने के लिए उनको केवल चार दिन में उन्होंने 12 दिन में सफर तय किया, इन 12 डेज ऑल द वे फ्रॉम सप्तग्राम टू पुरी 12 दिन में गए, केवल चार दिन उनको रास्ते में भोजन मिला, ओनली एट फोर ऑन फोर ऑकेजन ही गॉट समथिंग टू ईट. तो लिखते हैं हिस्टोरियन, द बॉडी वॉज फास्टिंग सोल वॉज फीस्टिंग. शरीर को तो तपस्या हो रही थी लेकिन आत्मा को आनंद मिल होना रहा था कि भगवान से मिलने जा रहा हूं. सो बॉडी वॉज फास्टिंग बट सोल वॉज फीस्टिंग, ये उसकी विशेषता थी. तो यात्रा में हमारी बॉडी को तो थोड़ा सा फास्टिंग भी होता है और कास्टिंग भी होता है, तो कष्ट भी आता है, तो लेकिन सोल इज फीस्टिंग बिकॉज वी आर गोइंग टू रेयर प्लेसेस ऑफ भगवान के पास टाइम के, भगवान के लीला के स्थलों के ऊपर जाते हैं, ये उसकी मानता है. और दूसरा, तीर्थ जाने का एक उद्देश्य ये है कि थोड़ी देर के लिए हम घर के झंझट से बच जाते हैं, वी आर अवे फ्रॉम ऑल फैमिली एंड बिजनेस प्रॉब्लम्स. अभी फ़ोन की वजह से हमारे प्रॉब्लम कम नहीं हुए हैं, वो आज आ रहे हैं हमारे पीछे. कलयुग बहुत परेशान हो गया, लोग यात्रा करना शुरू कर दिया तो घर भूल जाते हैं. उसने बहुत बड़ा नोकिया छोटा सा गांव है वहाँ चला गया जापान में, और वहाँ जाके उसको बोला मोबाइल बनाओ, हमारा ग्राहक कम हो गए हैं. कलयुग का ये इन्वेंशन है बहुत अच्छा. उसने सबकी जेब में डाला हुआ है, अब मंदिर में हो या कथा में हो लेकिन आपको जरूर घर याद दिलाएगा, भगवान को बुलाएगा. ये मोबाइल का विशेष काम है, ये कलयुग का एक बहुत बड़ा आविष्कार है कि आपको घर में भगवान के मंदिर में भी पीछे. अब तो मंदिर के अंदर आपने देखा है कितने लोग बात करते हैं, तो अच्छा है बंद कर दिया सिक्योरिटी के बहाने, कम से कम मोबाइल अंदर तो नहीं जाता, नहीं तो उधर भी. अभी कभी हमारे को आदमी मंदिर में दर्शन करने जाता है ना, जूता बाहर अगर कास्टली होता है ना, यू हैव शूज व्हिच आर कास्टली, तो भगवान का दर्शन करोगे तो आपकी दिमाग आपका विचार शूज में होगा. योर कॉन्शियसनेस इज जस्ट फोकस ऑन शूज बट यू आर लुकिंग एट ड्यूटी. तो जो हिंदू प्रचार जाते हैं ना, जैसे हिंदू मंदिरों में तो लोग एक मंत्र पढ़ते हैं तुम्हें माता च पिता तुम्हें बोलते हैं ना, तो वो बेचारा क्या कर रहा था, तुम्हें माता जैसे तुम्हें माता च ऐसे तो भगवान को देखते कह रहा था, फिर जूता याद आता तो तुम्हें पिता वो पीछे जूते को देखता था. तो ये मंदिर में खड़े हैं और फोन आ गया तो हमारा सारा काम बिगड़ गया. तो तीर्थ यात्राओं में एक लिमिटेड टाइम है, उसमें फ़ोन को यूज़ करना चाहिए, सवाए मैनेजरली कोई मैनेजर जो है उनकी मजबूरी है तो ठीक है, इफ़ दे आर रियली कंपेल्ड टू डू इट, बट इट शुड नॉट बी फॉर डिस्ट्रैक्टिंग अस फ्रॉम फोकसिंग अवर कॉन्शियसनेस ऑन कृष्णा एट द पास टाइम प्लेसेस. तो अच्छा है किसी तरीके से आतंकवादियों ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है कि हमारे को मोबाइल मंदिर में नहीं ले जाने दे रहे, वी शुड टेक इट एडवांटेज ऑफ दिस. नहीं, दिस इज पॉजिटिव थिंकिंग, एज इज स्पिरिचुअली इट इज वेरी गुड कि हमारा कम से कम ये झमेला. तो तीर्थ यात्रा में जाने का मतलब है थोड़े दिनों के लिए कॉन्शियसनेस को घर से कारोबार से हटाना है. क्यों? वन डे वी हैव टू गिव इट अप. जब वन डे वी हैव टू, सो वी आर प्रैक्टिसिंग इट. इसको कभी कभी बोलते हैं यू हैव टू लर्न टू डाई बिफोर यू डाई. ये यात्रा है ना, पुराने जमाने में जब लोग यात्रा करने जाते ना बद्रीनाथ आदि, तो लाल कपड़ा ऐसे बांध के जाते थे, पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे. वी माइट कम बैक, वी माइट नॉट कम बैक. दे वर वॉकिंग फॉर 30 डेज एंड नथिंग वॉज देयर ऑन द वे टू ईट. उसको बोलते कफन बांध के जाते थे, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, भगवान के पास जा रहे हैं. सो द होल आइडिया इज वी हैव टू लर्न टू डाई बिफोर वी डाई. भाई डेथ में क्या होगा, सब कुछ घर छूट जाएगा, धंधा छूट जाएगा ना. तो हम 15 दिन भाई यहाँ आ गए तो घर हमारा धंधा छूट ही गया है ना, तो हमारे पीछे फिर दुनिया चल रही है ना. व्हेन यू गो बैक यू सी ऑल द वर्ल्ड इज सेम, देयर इज नथिंग चेंज देयर. यू थिंक दैट यू आर कम हियर देयरफॉर द होल वर्ल्ड विल बी चेंज, नथिंग विल चेंज. ये सत्य है कि नहीं? आप समझे हम नहीं रहेंगे दुनिया बंद हो जाएगी, बट इट इज नॉट लाइक दैट, इट विल बी बेटर देन वे. कौन मुझे कह रहा था, एक कर्नल साहब मुझे कह रहा था, जितने कब्र में दबे हुए हैं ना वो सब ये सोच रहे थे हम नहीं रहेंगे तो दुनिया बंद हो जाएगी. दे ऑल वर थिंकिंग लाइक दिस बट द वर्ल्ड इज गोइंग ऑन. तो ये 15 दिन 20 दिन कम से कम हमारे को डाइंग बिफोर डेथ का एक्सपीरियंस है, मरने से पहले मरने का अनुभव है कि हम छोड़ के आए, घर चल भी रहा है, दुनिया भी चल रही है हमारे बगैर, तो हम नहीं रहेंगे तो भी चल जाएगी। तो ये भी एक त्याग का, वैराग का नमूना है। यू हैव टू गिव अप सो मेनी थिंग्स व्हेन यू कम आउट यात्रा के लिए, रिस्क भी लेना होता है। यहाँ तो नहीं, हम चार धाम में गए थे, कितना बड़ा रिस्क था, इट वॉज इज ए बिग रिस्क यात्रा। अभी तो इतनी टू बिग रिस्क, आप यहाँ यू आर जस्ट वॉकिंग एट द डेथ एज, ये तो नीचे खाई है और डेथ एज है, और हमारे सामने हमने देखा था एक बस गिरी हुई, जब एक जगह से हम आ रहे थे तो बस गिरी थी एक दिन पहले, सो इट हैपेंस। फिर भी हम इतना रिस्क उठाते हैं भगवान को देखने के लिए, दिस इज सार्ट ऑफ त्याग। यात्रा त्याग सिखाती है, त्याग सिखाती है, जैसी स्थिति है उसके अंदर हमको एडजस्ट करना है। सो यात्रा करना दूसरा अंग विशेष बताया नारद जी ने गृहस्थ धर्म का। तो ये दोनों हमको यहाँ करने का मौका मिल रहा है कि यात्रा भी कर रहे हैं, कृष्ण कथा भी सुन रहे हैं, सो बोथ आर टुगेदर। और तीसरा कहा कि दान गृहस्थ को हमेशा आवश्यकता से ज़्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, समय समय के ऊपर भगवान के धर्म के कार्य में, प्रचार के कार्य में दान देना चाहिए। तीन, वन आई कंक्लूडेड द थ्री मेजर थिंग्स गृहस्थ धर्म के लिए नारद जी का उपदेश, तीन चीज़ें थी, वासुदेव कथा, कृष्ण कथा, तीर्थ यात्रा, और आवश्यकता से अधिक अर्थ को कठा न करके भगवत सेवा में लगा देना चाहिए। तो ये तीनों काम देखो इस यात्रा में हमारे हो रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ जो जिसकी यथाशक्ति है कुछ दान कर रहा है, कहीं ना कहीं कथा सुन रहे हैं और तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। सो बेसिकली वो साधु तो रोज़ घूमते ही रहते हैं, आपने देखा चार धाम लोग पैदल करते हैं, स्टिल पीपुल वॉक ऑल दी वे इन चार धाम इन फोर मंथ फाइव मंथ दे आर जस्ट वॉकिंग। लेकिन ग्रस्थों के लिए ये तीन कामें जरूरी हैं, दैट व्हाट वी आर डूइंग इन दिस यात्रा। सो दिस व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर फॉलोइंग भागवत धर्म, ये हम भागवत धर्म का अनुसरण कर रहे हैं, वी आर फॉलोइंग भागवत धर्म, कि ऑल थ्री थिंग्स वी आर डूइंग इन वन शॉट, एक ही काम में तीन काम हो रहे हैं। तो हमने शुरू किया कहाँ से, बड़ौदा में हम जगन्नाथ भगवान के दर्शन किए रथ यात्रा के दिन पे, श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा। भगवान श्री जगन्नाथ का जो ये स्वरूप है, दिस फॉर्म ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, इस फॉर्म ऑफ जगन्नाथ ड्यू टू लव फॉर हिज डिवोटी, भगवान का ये रूप भगवान के प्रेमियों के कारण है। सो इस रूप में भगवान आए हैं अपने भक्तों के प्रेम के कारण, बिकॉज ऑफ द लव ऑफ द डिवोटीज ही हैज अज्यूम्ड दिस फॉर्म। तो दिस फॉर्म रिमाइंड अस दैट कृष्ण loves his devotees more than himself. भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, because this form is only because he was hearing the story of Radha and other gopis and their separation from Krishna. And this form is to see, hankering to see Radha and gopis and Gwal Bals of Vrindavan. तो जगन्नाथ का ये रूप अपने प्रेमी भक्तों को देखने का रूप है, ही वॉन्टेड टू गो एंड सी देम। और राधा रानी को उस हालत में देख के उनका ये रूप हो गया। एंड श्री प्रभुपाद सेड, बिकॉज श्री चैतन्य महाप्रभु स्टेड इन जगन्नाथपुरी, सो जगन्नाथ रथ यात्रा इज पार्ट ऑफ द इस्कॉन कल्चर, because of Mahaprabhu we have accepted this as a ISKCON culture, so we do it, celebrate it. In teen char lecture mein, teen char parvachan mein Srila Prabhupada said like this. So is rath yatra mein bhag liya humne, there is very auspicious in itself. Then we travel to our Vallabh Vidyanagar temple, राधा गिरिधारी मंदिर, वेरी ब्यूटी नाइस डीट इज वेरी नाइस ब्यूटीफुल, डिवोटीज आर डूइंग ए वेरी वंडरफुल सर्विस देयर, नाइस सर्विस एटीट्यूड, दे हैव बिल्ड सुइटेबल गेस्ट हाउस आल्सो। सो दीज आर तीर्थ स्थान, प्रभुपाद तीर्थ स्थान फॉर अस, स्कान टेम्पल आर द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज व्हिच प्रभुपाद हैज मेड फॉर अस। So they are whenever we go to ISKCON temple, it reminds us of Prabhupada and his dedication and devotion ये प्रभुपाद की तपस्या का प्रसाद है जो हमको मिल रहा है. इट इज द मर्सी ऑफ प्रभुपाद व्हिच वी आर गेटिंग इन ऑल दीज प्लेसेस. अरे मत हे तेजी कम लव कम बाबा ओके. सो व्हाट आई एम सेइंग इस्कॉन टेम्पल्स आर ग्रेटेस्ट पिलग्रिमेज प्लेस फॉर अस बिकॉज इट रिमाइंड्स अस अबाउट प्रभुपाद एंड वी आर हियर इन कृष्ण कॉन्शियसनेस बिकॉज ऑफ प्रभुपाद. So there is most important. These temples are greatest pilgrimage place for हमारे लिए बड़े से बड़ी यात्रा का स्थान वही है. वहाँ हमको प्रभुपाद मिलते हैं और सुंदर भगवान के दर्शन मिलते हैं. So much so in प्रभुपाद said in वृंदावन कृष्ण बलराम मंदिर की चार दीवारों में सब कुछ है. You just stay here, you will get everything. For the devotees in early days, they were going here and there for running. He said, everything is within this four wall. What it means is, ISKCON temples are a complete package of Krishna consciousness. So, jahan jahan Prabhupada ji ke dwara sthapit kiye hue Krishna bhavana ke mandir the, wahan hum sab jagah gaye. Wo hamari tirth yatra ka ek vishesh ang hai. You may remember Dwarka Not Dwara, but you should also remember all these ISKCON temples we visited one by one. So, बहुत सुंदर मंदिर हमने देखा बड़ौदा का राधा श्याम सुंदर जगन्नाथ बलदेव शुभ्रदा और गौर निताय का राधा गिरिधारी का दर्शन किया. फिर हम एक भक्त के कारण भगवान द्वारका से भाग के डाकोर में आए रणछोड़ राय का दर्शन किया और वहाँ उसकी स्टोरी भी बताई थी जो जिसने सुना हुआ है. तो रणछोड़ नाम भगवान का क्यों पड़ा के लास्ट टाइम जो 18th टाइम जरासंध आया और कालयवन दोनों आए तो भगवान ने निश्चय किया कि इस वक्त दोनों से युद्ध करके मथुरा को संकट में नहीं डालना है. कलयवन का तो मुचकुंड के द्वारा संहार कराया और ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए भगवान भाग के द्वारका चले गए तो नाम रणछोड़ हो गया. लेकिन रणछोड़ राय का ये मंदिर है ये भी भगवान रण तो नहीं छोड़ के आए लेकिन द्वारका छोड़ के आ गए. वो जो बोडाना भक्त था वो 2 महीने पैदल जाता था यहाँ डाकोर से हाथ में तुलसी लेकर और उसी तुलसी को रास्ते में पानी देता जाता था. 2 महीने वही तुलसी जाके भगवान को चढ़ाता था द्वारका में. उसके प्रेम के कारण द्वारका से भगवान द्वारकाधीश बैलगाड़ी में चढ़ के यहाँ आ गए. वो मैंने कहा था कि दूसरा कारण भगवान का रण छोड़ने का ये था कालयवन और ब्राह्मण और तीसरा ये था कि रुक्मणी का विवाह होने वाला था. भगवान को मालूम है मुझे बुलाएगी मैं युद्ध में अटक गया तो वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा. तो वो भी एक कारण अंतरंग कारण तो वो है. दी इंटरनल रीजन इज दैट कृष्ण हैज़ टू रिक्लेम रुक्मणी बैक सो ही हैज़ टू रन अवे फ्रॉम दी बैटल फील्ड. दैट इज दी वेरी डीप रीजन फॉर बींग कॉल्ड रणछोड़. नहीं वहाँ से भाग के आ गया और क्या किया जरासंध पीछे आया भागो भागो कायर भाग कहाँ रहे हो कायर खड़े हो युद्ध करो और दोनों पहाड़ के ऊपर चढ़ गए. प्रसन्न पर्वत ऐसे कुछ उसका नाम है. तो उन्होंने पर्वत को चारों ओर से आग लगा दी और बहुत जाके फीस्ट किया कि कृष्ण बलराम को हमने जला के मार दिया. 80 किलोमीटर पर्वत के ऊपर से दे जंप फ्रॉम देयर. हाँ जंप किया ऊपर से. वो पिक्चर है किसकान की ऊपर से जंप करते हुए और वहाँ से वो द्वारका चले गए. और वो द्वारका जाते ही रुक्मणी के विवाह के संदेश आया और भगवान वहाँ चले गए. तो हमने डाकोर जी में बहुत सुंदर कृष्ण का दर्शन किया और वहाँ से फिर हम सुबह द्वारकाल के लिए जो रवाना हुए थे रास्ता तो हम सब ने देखा लेकिन द्वारकाधीश का दर्शन फिर द्वारकापुरी में किया. तो द्वारकापुरी के हम लिए हमने आपने बताया था इसका नाम था अनर्थ देश. महाराज अनर्थ शरियाती के पुत्र थे सूर्यवंश के. उसके पास धरती थी नहीं. उसके पिता को उसने कह दिया धरती का पति पृथ्वी का पति कौन है विष्णु. ये धरती जो है ना धरती जो हमको दिखती है इसको पृथ्वी बोलते हैं. ये आदि भौतिक रूप है। आदि देविक रूप में पृथ्वी गाय है, जो भगवान को प्रार्थना करने जाती है वो उसका देवी का रूप है, आदि देविक रूप है। आध्यात्मिक रूप में भूदेवी विष्णु पत्नी है, भगवान विष्णु के साथ होती है भूदेवी और श्री देवी। अचल संपत्ति भगवान की जो है वो भूदेवी, भगवान विष्णु पत्नी है। तो विष्णु पत्नी है भूदेवी। तो महाराज शरियाती कहता है मैंने मेरे बल से इसको प्राप्त किया है, तो उसके बेटे ने कहा ये तो भगवान श्री कृष्ण की है, आपकी नहीं है। तो पिताजी नाराज हो गए, बोला मेरी पृथ्वी के ऊपर मत रहो, तुम अपना जाके रहने का कहीं व्यवस्था करो। तो समुद्र के किनारे जाकर उसने भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की। श्री कृष्ण ने वैकुंठ से 100 योजन पृथ्वी को धरती के ऊपर उतारा और उसको कहा अनर्थ देश, क्योंकि अनर्थ के लिए आया था इसलिए उसको अनर्थ देश कहते हैं। और फिर आगे चल के उसको कुशस्थलपुरी कहा गया। उनके बेटे ने वहाँ जब रेवत महाराज ने राज किया तो उसका नाम था कुशस्थलपुरी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब वहाँ गए और गोपियों को महल से दरवाज़ा नहीं मिला तो उन्होंने बोला द्वारका द्वारका द्वारका, तो ये द्वारका नाम हो गया। तो ये 3 नाम ऐसे इस क्षेत्र के हैं। तो वहाँ हमने भगवान द्वारकाधीश का ये मंदिर जो हमने देखा बना हुआ, अभी तो 2500 साल का इसका इतिहास है, लेकिन ओरिजिनल मंदिर जो बनाया था वो वज्रनाभ ने बनाया था, भगवान श्री कृष्ण के परपोते के द्वारा बनाया हुआ मंदिर था। द्वारकाधीश के दर्शन तो हमने उस दिन रात को किए और दूसरे दिन सुबह सुबह हम गोमती तीर्थ के ऊपर स्नान करने गए, गोमती घाट पे, उसको चक्र घाट भी कहते हैं, सुदर्शन चक्र, भगवान के वहाँ सुदर्शन चक्र से उद्धार हुआ था कुबेर के 2 मंत्रियों का। तो वो बहुत पवित्र स्थान है, समुद्र और गोमती का मिलन। वहाँ हमने स्नान किया और फिर द्वारकाधीश का पुनः दर्शन करके हम रुक्मणी माता के दर्शन के लिए गए थे। वहाँ तो पंडित जी ने पूरी कथा हमको बताई थी। तो रुक्मणी का मंदिर का बहुत सुंदर हमने दर्शन किया था। दुर्वासा मुनि के सांप के कारण वो वहाँ, तो पूरी कथा पंडित जी ने लंबी छोड़ी बताई थी। फिर बेट द्वारका का दर्शन किया। बेट द्वारका की ये मान्यता है कि ये भगवान का अपना महल था जो किसी ज़माने में सोने और हीरे मोतियों का जड़ा हुआ था, लेकिन एक यही बचा गया समुद्र ने, बाकी समुद्र ने सारी द्वारका को निगल लिया। एवरी अदर पार्ट ऑफ द्वारका इज कम्प्लीटली विद बैक इन टू द सी, बट दिस वॉज ओनली कृष्णज पैलेस लेफ्ट। तो माँ भगवान तो वहाँ इस मंदिर, वहाँ द्वारकाधीश का मंदिर तो अभी दोबारा निर्माण अधीन है, काम चल रहा है वहाँ। तो वही हमने वहाँ दर्शन विशेष रूप से किया। लेकिन वहाँ सुधामा की हमने इसलिए कथा की कि उनकी मान्यता है कि सुधामा वहाँ आए थे द्वारका में भगवान के पास। वहाँ हमने ये भी कहा था कि यहाँ चारों ओर से 16108 महल कभी रहे होंगे। जब नारद जी आया करते थे, बड़े सुंदर घर थे, रोड थे, जिसका वर्णन भागवत में है, वो सब अब जल के नीचे हैं। अभी तो रिसर्च वाले कहते हैं कि नीचे जाके उसको देखा जा सकता है। 5-6 पहले सिटीज समुद्र में यहाँ चली गई है, जैसे 6th सिटी, पहले 5 समुद्र में पहले भी हैं। और बेट द्वारका से हम वापस गोपी तालाब आए थे, और वो बहुत बड़ा विशेष हमारे लिए इसलिए है कि पूरे विश्व के अंदर जितना भी गोपी चंद आता है, जो हम सब लोग रोज लगाते हैं, वो उस तालाब से ही आता है। वो दूसरी बात है कि आजकल लोग मेट को उसके साथ मिक्स करके गोला बना के हमको दे देते हैं, लेकिन ओरिजिनल गोपी चंदन वहाँ से आता है। वही एक प्लेस है दुनिया में जहाँ से गोपी चंदन आता है। गोपी चंदन का अर्थ ये है, वो चंदन जो भगवान के शरीर को स्नान कराते हुए गोपियों ने धोया था, जिनके साथ उनके अपने अंग राग जो गोपियों के शरीर, वो लब सब जाके धरती में नीचे जाके बैठ गया था, वही मिट्टी निकलती है जो भगवान के शरीर से और गोपियों के शरीर से उतरी हुई है, उनको हम सर के ऊपर धारण करते हैं। तो 7ों गुण के तिलक में गोपीचंद का तिलक शुद्ध सात्विक तिलक है वैष्णव के लिए। तो उस गोपीचंद में, उस गोपी तला में, उस गोपीचंद में उड़पी का कृष्ण मिला था मध्वाचार्य को। एक दिन सब रानियों ने कहा कि हमने सुना है आपकी बाल लीला बहुत सुंदर वृंदावन में है, हमारी इच्छा है आपके बाल लीला का दर्शन करने का। तो भगवान थोड़ी देर के लिए छोटे से हाथ में डंडा ले लिया, मंत्री ले ली और ऐसा रूप धारण किया, तो बड़ा अच्छा लगा रुक्मणी को। तो उन्होंने कहा कि आप कोई इस रूप में मैं पूजन करना चाहती हूँ। तो ये ठाकुर जी अपने आप ऐसे बन गए थे जो आज उड़पी में जिनका दर्शन हम करते हैं, मध्वाचार्य को मिले थे, और गुरुवायुर में जो ठाकुर हैं वो भी रुक्मणी के द्वारा पूजित श्री कृष्ण का विग्रह है वसुदेव कृष्ण, वो भी द्वारका से ही गुरुदेव और वायुदेव उठा के वहाँ ले गए, गुरुदेव और वायुदेव वहाँ से वहाँ ले गए, दोनों द्वारका के श्री विग्रह हैं जो इस वक्त आज एक केरल में और एक दूसरा कर्नाटक में, एक कर्नाटका में और केरल में जो दोनों ड्यूटी पूजित हैं वो द्वारका से गई हुई है, और रण छोड़ रहा है द्वारका की तीसरी ड्यूटी है। तुमने वहाँ ये सुना था कि वो ठाकुर जी तो यहाँ आ गए फिर दोबारा वहाँ दूसरे प्रकट हुए जो आज द्वारकाधीश के रूप में, तो वहाँ से आगे आके हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया, और दूसरे दिन वहाँ फिर कल हम बताया था आपको द्वारका के अंदर एक स्थान वो है जहाँ महाराज निर्ग बहुत बड़े दाने गायों की दान में गलती के कारण गिरगट बने थे, लिजर्ड बने थे, वो जहाँ इस्कान गेट लिखा हुआ था ना बड़ा इस्कान प्रभुपाद गेट, उसके जाते हुए उस हम यहाँ से जाएंगे तो लेफ्ट साइड में एक कुंड बना है उसको वो ककरास कुंड बोलते हैं, लेकिन उसको बोलते हैं निर्ग कूप, वो निर्ग कूप वहाँ वो स्थान है। तो वहाँ जब भी अभी तो इस बार हम ऐसे भागा दौड़ी में गए, भगवान कभी समय हमको दे रिटायरमेंट के बाद, वह कभी 10 दिन जाके वहाँ रहना चाहिए। और भागवत के 40 अध्याय द्वारका की लीला के भगवान के हैं, 40 चैप्टर्स, वो बैठ के या वहाँ रोज़ के 5-7-10 चैप्टर पढ़ने चाहिए, तो वहाँ के लीला सारी हमारे मन में प्रकट होने लगेगी। वहाँ से दूसरे दिन सुबह सवेरे हम निकले तो पहले मूल द्वारका कहते हैं वो रास्ते में द्वार, वो ऐसे हो सकता है कि भगवान जाते हुए थोड़ी देर के लिए वहाँ रुकते हैं, अथवा इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि आनर्त महाराज ने जब द्वारका का स्थापना की थी तब वो मूल स्थान रहा हो, तो दोनों भी संभावना है। और वहाँ से पोरबंदर में हमने सुदामे के उस घर को देखा जहाँ से सुदामा गया था भगवान के पास, तो सुदामा का महल बन गया था। वहाँ से एक स्थान पे हम बीच में गए थे, वो 16 किलोमीटर वहाँ से राजकोट रोड पे 16 किलोमीटर जाके फिर अंदर जाना था, वहाँ से इसका मतलब द्वारका से भगवान 120 किलोमीटर उस समंत तक मणि को ढूंढते हुए आए थे। समंत तक मणि को ढूंढते भगवान श्री कृष्ण 120 किलोमीटर आए थे, और वहाँ जामवंत जी की जो केव थी उसके अंदर प्रवेश किया और वहाँ से समंत तक मणि और जामवती को प्राप्त किया था। तो वहाँ हम जा नहीं पाए, लेकिन कभी दोबारा समय मिलेगा तो एक बार जीवन में देखने जैसा है कि बहुत बड़ा विशाल, जैसे यहाँ से लेके मंदिर तक, मंदिर से थोड़ा सामने वाली गली तक नीचे जैसे इतनी बड़ी गुफा है अंडरग्राउंड, लेकिन ऊपर तो ऊपर से इतना जाने का रास्ता है कि एक आदमी एक वक्त जा सकता है, लेकिन 1.5 फ्लोर नीचे जाने के बाद वो सारी गुफा है, उसके अंदर 2 रास्ते और सीक्रेट गुफा है, एक जाती है द्वारका, एक जाती है जूनागढ़, 600 किलोमीटर दोनों तरफ से इंटरनल रास्ते हैं कैसे भगवान के बनाए हुए हैं उस वक्त में। तो ये 2 स्थान, और फिर हम आगे गए थे, आप वहाँ से गुजरे थे जहाँ आपकी बस फंसी थी, वो माधवपुर शहर है, माधवपुर शहर समुद्र के किनारे के ऊपर एट दी सी सोर, वो उसमें ये मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण जब रुक्मणी को लेके आए थे विदर्भ देश में तो विवाह संस्कार उनका वहाँ संपन्न हुआ था माधवपुर में। तो एक वो स्थान है मंदिर के नाम में रुक्मणी कृष्ण के पाणी ग्रहण संस्कार का विधिवत विवाह भगवान श्री कृष्ण का वहाँ हुआ था। और फिर हम आ गए थे सोमनाथ में, तो वहाँ वो भालुक तीर्थ वहाँ देखा जाए, भगवान को बाण मारा गया पीपल के पेड़, लेकिन वहाँ से थोड़ी देर आप आगे चल गए थे दर्शन के लिए, आरती का समय था, वहाँ से 100 मीटर की दूरी पे बाण गंगा है, बाण गंगा वहाँ वो भील खड़ा था, वहाँ से उसने वो तीर मारा था, तो वो स्थान है जहाँ से उसने तीर मारा था और वहाँ तीर लगा था। फिर हम सोमनाथ का नया मंदिर जो अभी हमारे राजाओं ने हरे कृष्णा बेटी सुख से पहुँचो वहाँ गो बैक पीसफुली, वेर इज माधव बाबा, मेक श्योर ही इज नॉट विथ मी, ही इज ऑलवेज विथ मी, सो सेफ जर्नी हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एसोसिएशन, मत जी हरि बोल दंडवत, प्रसाद पैक ले लिया, प्रसाद ले लिया, यू हैव टेकन द पैक, प्रसाद पैक, थैंक यू, हरि बोल। तो दूसरा जो मूल मंदिर था, अब ये कितना हमारा ये मंदिर सोमनाथ का इतना रिच था कि हीरे मोती थे कि अफगानिस्तान से मोहम्मद शाह गजनवी 17 बार आया, 17 times ही केम टू लूट दिस टेम्पल, और 17 बार उसकी रक्षा हुई, 18वीं बार जब आया तो उसको लूट के ले गया, सो दिस टेम्पल वॉज लूटेड। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु, राधा पाद पंकज, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, यू आर टेकिंग अवर हार्ट नॉट हर्ट, श्री राधे श्याम, ओके हैव अ गुड जर्नी, श्री कृष्ण विल ब्लेस यू। तो इतना ये हमारा प्रभास क्षेत्र, उसका नाम है, आप उसके ऊपर चर्चा की थी, प्रभास क्षेत्र, और वो भी स्थान ऐसा है जिसमें 11वां स्कंद श्रीमद् भागवत का बैठ के वहां पढ़ना चाहिए, 11th canto ऑफ श्रीमद् भागवत, इट अपियर्ड इन प्रभास क्षेत्र। प्रभास क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने 11वां स्कंद में उद्धव गीता सारी उद्धव को दी है, यदुवंश का संहार वहाँ हुआ, सारे यदुवंशियों का भगवान ने तर्पण किया त्रिवेणी संगम में, वहाँ समुद्र से 2 नदियाँ मिलती हैं आकर, वो त्रिवेणी संगम है पीछे, हम जा नहीं पाए, हम रश में थे, तो वो त्रिवेणी संगम में भगवान ने अपने पूरे यदुवंशियों का वहाँ तर्पण स्वयं अपने हाथ से किया था। और फिर एक गोलोक धाम कहते हैं जहाँ से भगवान बलदेव जी शेष का रूप धारण किया और वहाँ से अपने धाम चले गए, तो देर इज ऑल्सो 1 kilometer ऑन अपोजिट साइड ऑफ सोमनाथ टेम्पल, और भगवान श्री कृष्ण वहाँ से गोलोक धाम गए थे। तो ये क्षेत्र 11 स्कंद श्रीमद् भागवत कभी बैठ के वहाँ पढ़ने का है, इफ वी गेट सम टाइम जस्ट गो सिट देयर एंड रीड 11th chapter कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवत, देन यू विल नो वो जगह है जहाँ ये भागवत बोली गई, सो उसकी ये महत्व है, देन वी रियली रिलिश इट मोर वेन इट इज एट दैट सेम प्लेस भागवत पुरुषों के संग में किया जाए। और फिर हम वहाँ से जूनागढ़ जब आए थे तो somehow we made it and it was good that we went there, कितना सुंदर दर्शन था 3 पहाड़ों का, जो तीन पर्वत बहुत सुंदर दिख रहे थे, उसमें रेवत गिरी, वो श्री शैल पर्वत का पुत्र, जैसे गिरिराज जो है वो द्रोणाचल का पुत्र है, ये पर्वत भी पर्सन है, इनको पहले विंग हुआ करते थे, ये उड़ते थे, जहाँ जाएं वहाँ जाके बैठ जाते थे, तो इंद्र ने इसके विंग काट दिए थे, उसमें से मीनाक के विंग नहीं कटे थे, वायुदेव ने उसकी रक्षा की थी, समुद्र में चला गया था, इसलिए हनुमान के लिए निकल के आभार आया था उसकी सेवा करने के लिए, मीनाक पर्वत, मीनाक बोलता है तुम्हारे पिता का हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है, ही सेव्ड मी फ्रॉम इंद्रस वज्र, देयरफॉर आई एम हियर टू सर्व यू। सो रेवत पर्वत का विशेषता ये है कि बलराम जी इस पर्वत के ऊपर द्रविड़ गोरेला को उधार किया था, ऊपर कपीश तीर्थ है, शास्त्र में लिखा है, उनको मालूम नहीं है पंडितों को, लेकिन बहुत बड़ा सुंदर तीर्थ है ऊपर, उसकी बड़ी महिमा है गर्ग संहिता में, और ये हमको वहाँ जाके जानकारी हुई कि रेवती और बलराम जी का विवाह वहाँ संपन्न हुआ था, तो पहले विवाह रेवती और बलराम जी का हुआ, फिर कृष्ण और रुक्मणी का विवाह हुआ, तो दामोदर कुंड और ऊपर सामने गिरनार पर्वत, तो बहुत भारत में प्रसिद्ध जगह है गढ़ गिरनार, दत्तात्रेय का यहाँ मंदिर है, और बहुत पूरे भारतवर्ष के साधु सन्यासी जो लोग हैं वो वहाँ जाते हैं दर्शन करने के लिए, और अश्वस्थामा के पर्वत के ऊपर आज भी अश्वस्थामा निवास करता है, ये हम दर्शन करके फिर हम इस्कान के मंदिर राजकोट में आए, राधा क्या नाम था, राधा गोविंद, राधा नील माधव, तो राधा नील माधव का दर्शन किया, वो भी भक्तों ने अच्छा सेवा किया, बड़ा अच्छा विस्तार, बड़ा मंदिर ठाकुर जी का बन रहा है। वहाँ से हमने राधा गोविंद देव जी का गोविंद धाम में दर्शन किया, आके अहमदाबाद में, अहमदाबाद का मंदिर, दिल्ली का मंदिर और बेंगलुरु का मंदिर, तीनों प्रभुपाद की 100 साल की जन्म शताब्दी में प्रभुपाद को अर्पण किए गए। थ्री बिग टेम्पल वर स्पेशली ऑफर्ड टू प्रभुपाद इन 96। दिल्ली का मंदिर राधा पार्थसारथी, राधा गोविंद देव जी और राधा कृष्ण चंद्र बेंगलोर का, ये तीनों विशेष मंदिर बड़े विशाल बनाए गए। और वहाँ हम तो रात को रुके और सुबह वहाँ से कल ही हमने दर्शन किया। वो भी वैष्णव दृष्टिकोण से बहुत मुख्य दर्शन है। कपिल तीसरा स्कंद पूरा भागवत का आधा 20-14 अध्याय उस स्थान के ऊपर कहे गए हैं, जो टीचिंग ऑफ कपिल देव, वो स्थान है, कपिल देव का प्रकट्य स्थली है और बिंदु सरोवर राधा कृष्ण के मिलन का स्थान है। इसका बड़ा महत्व है। आप कोई माता जी का कल मैंने दिया था पुस्तक, उसने पढ़ा था बैठ के 2 अध्याय उसमें। और आज हम इस स्थान के ऊपर हैं श्रीनाथ द्वारा। ये तो समझ ली कि 150-150 साल पहले यहाँ भगवान आए हैं, वृंदावन से यहाँ आए हैं। तब से यहाँ से के राजा महाराजाओं ने बहुत बड़े प्रेम से के साथ उनको यहाँ का मालिक बना दिया, भाई नाथ द्वारे का मालिक यहाँ का श्रीनाथ जी है। और हमने देखा यहाँ सेवा पूजा बहुत, दो ही चीज़ें विशेष हैं, प्रसाद, हर वक्त भगवान को भोग लगता है और चारों ओर प्रसाद मिलता है, और दर्शन के लिए रश। तो दर्शन और प्रसाद दो इस स्थान की विशेषता है। दर्शन करो, प्रसाद खाओ। कथा कीर्तन का इतना ज़्यादा विस्तार नहीं है, दो ही चीज़ें यहाँ विशेष, प्रसाद दर्शन, ये कर ले, बाकी आप यहाँ का देख लिया। अब प्रसाद लेंगे, रात को रेस्ट करो आराम से, कल सुबह मंगला दर्शन करके, और यहाँ से हम एक ही पूरे पृथ्वी के ऊपर ब्रह्मा जी का मंदिर है। और पुष्कर तीर्थ का जो बहुत बड़ा कुंड था वो तो सूखा हुआ है कहते हैं, लेकिन एक छोटे कुंड में जल है, उसमें चाहें तो नहा सकते हैं। ये जहाँ हम जा रहे हैं पुष्कर, ये सत्ययुग का तीर्थ है मोस्ट प्रॉबेबली, भक्ति विनोद ठाकुर के अनुस्वार, अथवा त्रेता या सत्य का है, क्योंकि द्वापर का कल तो कुरुक्षेत्र है। आप लोग कभी कुरुक्षेत्र भी गए तो नहीं है ना? जनरली अभी आपकी आइटनरी में नहीं है, नहीं है, लेकिन जब वृंदावन तक जाते हैं तो कुरुक्षेत्र कोई दूर नहीं है, जहाँ भगवान ने गीता कही है और भीष्म पितामह जहाँ तीरों की सैया के ऊपर सोए हुए, आज भी वहाँ वो स्थान है दो चीज़ें देखने की। और वो सरोवर है जिसके ऊपर कृष्ण गए थे यहाँ से द्वारका से स्नान करने के लिए सन से लूनर इक्लिप्स में, और जहाँ नंद बाबा और यशोदा आके मिलते हैं, वो सरोवर में अभी भी जाके स्नान कर सकते हैं, वो अभी उधर है। उसको समंतक पंचक कहते हैं, भगवान ने उधर आके स्नान किया था कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद। वो कोई मेरे ख्याल में मोर देन 1/2 किलोमीटर बहुत बड़ा सरोवर है, ब्यूटीफुल बना हुआ है, दो बड़े सरोवर हैं। एनीवे किसी का पास लेयर टाइम है तो फ्रॉम दिल्ली इट इज़ से 2 hours, 2.5 hours ड्राइव, जाओ स्नान करो, दर्शन करो, वापस आओ। इफ़ एनीबडी आउट ऑफ दिस यात्रा वांट टू गो एंड सी, द गीता का प्रकट्य स्थली है जहाँ भगवान ने गीता बताई थी। दिल्ली से सुबह मानो क्या 5 बजे निकलो तो 7 बजे वहाँ पहुँचो, 9 बजे तक स्नान करो, दर्शन करो, 11 तो यू विल बी बैक बाय से 2 o'clock, 3 o'clock बैक। इस्कान का भी वहाँ मंदिर है, इस्कान कुरुक्षेत्र, और जहाँ गीता कही है उसके सामने इस्कान को जमीन मिली है, मंदिर बना नहीं पाया लेकिन जमीन गवर्नमेंट से मिली है। वहाँ प्रभुपाद वांटेड द टेम्पल नियर टू दिस, तो प्रभुपाद उस वक्त गए थे कुरुक्षेत्र में और प्रभुपाद वहाँ मंदिर बनाना चाहते थे उस स्थान के ऊपर जहाँ गीता कही गई है। तो वो भी ये जैसे कनेक्टेड सा धाम है इससे। तो अब प्रसाद लीजिए आगे, ये अभी तक जो कर जस्ट रिफ्रेश जो हमने किया था उसको कर लिया, और आगे कल हम ये ब्रह्मा जी के बाद जयपुर में देखेंगे। जयपुर को गुप्त वृंदावन कहते हैं, इज ए वृंदावन विच इज़ सीक्रेट, सारे वृंदावन के ठाकुर जी वहाँ बैठे हुए हैं, तो उनका दर्शन करेंगे। और समय मिले आपके पास लेयरली, अपना कोई यात्रा पूरी नहीं भी जाए, दोज हु अफोर्ड टू गो, जयपुर का म्यूज़ियम देखना, उसके अंदर दो बहुत बड़े चांदी के से 400-500 liter के चांदी के दो बड़े मटके बने हैं। जयपुर के महाराज जब गए थे, इंग्लैंड बुलाया गया था, तो उन्होंने बोला पहले तो जहाज़ मुझे नया चाहिए जिसमें कोई चढ़ा ना हो, और पानी में सिर्फ गंगा का पीऊंगा जब वहाँ रहूँगा। तो एक साल इंतज़ार किया, वो दो मटके बने, वो भर के फिर गया था। तो वो देखने के लिए म्यूज़ियम में ये है। और ऊपर ओरिजिनल जो जयपुर का शहर था, एक तो कनक वृंदावन है जहाँ जयदेव गोस्वामी के ठाकुर जी हैं, वहाँ जाके शाम को कल बैठ सकते हैं, एकादशी है पर अगर तो परसों जब करें बैठें, बहुत अच्छी बगीचा है, बहुत अच्छा प्लेटफार्म है कथा कीर्तन करने के लिए कनक वृंदावन में। तो आप गए हैं नीरज कभी कनक वृंदावन? ऊपर से घाटी है वहाँ, पुराना शहर जयपुर का ऊपर बसा हुआ था ओरिजिनल। तो वो उस शहर में जो जाते हैं अभी हाथी में चढ़ के चढ़ा के ले जाते हैं ऊपर, अथवा छोटी गाड़ियाँ जाती हैं ऊपर, आमेर ऊपर, वो आमेर उस तरफ। तो ये दर्शन परसों करके फिर करौली में मदन मोहन को देखते हुए वृंदावन जाएंगे। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, कैसे भी करके हमने 40 मिनट आज कथा कर ही ली। हरे कृष्ण बोलो।